Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भद्रं कर्णे श्रृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्ययत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनवर् व्यशेमदेवहितं यदयुः सस्तेन इन्द्रो वृधस्रवः सस्तेन पूखा विश्ववेदः सस्तेनस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः सस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमात्मा की और महापुरुषों की असीम कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के विषय में। कल उपक्रम हुआ था कि मांडुक्य एकमेवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये, मुक्ति को उपनिषद में कहा गया कि उपनिषद तो बहुत सारे हैं, अर्थ गंभीर भी है, लेकिन कितने उपनिषद है? वेद में जितनी शाखा है उतनी उपनिषद है, 1180 शाखा है, उतनी उपनिषद भी है। उनमें से मुख्य कितनी है? 160 बताया गया। और उनमें से भी कितनी है मुख्य? 32 बताया गया, छाट करके 32 है। और उनमें से भी कितनी है भाष्य? जितने ऊपर है कितने हैं? 10 है, 10 10 मुख्य है। और उनमें से भी कौन मुख्य है? तो यही है। हाँ, तो मांडुक्य एकमेवालम मुमुक्षुणम विमुक्ते, ये भगवान राम ने कहा हनुमान जी से कि मुमुक्षु के लिए बताया, सभी के लिए नहीं है। इसलिए हमारे भगवान शंकराचार्य के गुरु भगवान गौड़पाद आचार्य उन्हें इसी का आधार लेकर के मांडुक्य के उपनिषद का वेदांत के जो सार है, जिसके ऊपर यहां पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं, वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम। तो सार संग्रह भूतम जो कह दिया, सार को संग्रहित कर दिया वेदांत के, किसका आधार लेकर के? यही मांडुक्य के उपनिषद। इसलिए कुछ ना कुछ इसमें विशेषता है बाकी उपनिषद की अपेक्षा से, कि हम लोग व्यवहार तो करते हैं संसार में, लेकिन परीक्षण नहीं करते हैं। इसने परीक्षण किया है, अवस्था तरह का परीक्षण। तीन प्रकार की अवस्था बताएंगे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसके द्वारा व्यवहार करता है जीवात्मा, लेकिन उसमें अभ्यास कर लेता है अवस्था के साथ, और मैं साक्षी हूं ये अनुभव नहीं कर पाता है। ये परीक्षण करने के लिए एक प्रक्रिया हो गई अवस्था तरह का परीक्षण। दूसरा एक परीक्षण क्या है, कार्यकारण भाव का परीक्षण। कल आपको बताया कि संसार में कार्यकारण भाव दिखता है, और बुद्धि में जब तक कार्यकारण भाव है तब तक शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। न च तस्य कार्यकारणम च विद्यते। शुद्ध में ना कोई कार्यता है ना कोई कारण आता है। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है, सिनेमा के पर्दा में वृक्ष दिखता है, वृक्ष। अब वृक्ष में फल दिखता है, पत्र है, पुष्प है, तो आप विचार कर लो वृक्ष में दिखने वाला पुत्र पत्र पुष्प आदि, इसका मूल कौन है, वृक्ष है कि पर्दा है। हाँ, लेकिन दिखता है वृक्ष, लेकिन वृक्ष वास्तविक नहीं है। दोनों का आधार एक पर्दा है, वृक्ष का भी आधार वही पर्दा है, और वृक्ष में दिखने वाला जो पुष्प आदि फल आदि उसका भी एक पर्दा से भिन्न कुछ भी नहीं है। ना कोई कार्य है ना कोई कारण है, एक एवं द्वितीयम। यहां तक साधक को पहुंचना है, इसलिए कार्यकारण भाव का विचार करना है यहां पर। और साधक जहां पर पहुंचना चाहता है उसमें तो नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है। अब किसी पदार्थ को देखते हैं तो दो ही उपाधि लगती है, एक तो होगा नाम, दूसरा होगा रूप। और अपना स्वरूप कैसा है, नाम से भी रहित है और रूप से रहित है, फिर वहां तक कैसे साधक पहुंचेगा, तो इसका विचार भी यहां पर है। वहां तक पहुंचने के लिए ओमकार एक साधन, ओमकार। वही ओमकार ऐसा है कि इसके आधार पर परब्रह्म को ही प्राप्त करता है साधक, और उपासना से अपर ब्रह्म जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्म लोग वहां तक भी पहुंच सकता है ओमकार के माध्यम से। केवल यहां तक नहीं, धर्म अर्थ काम को भी प्राप्त करेगा। चतुर्वर्ग फल प्रदाह ओंकार को बोलते हैं, चतुर्वर्ग चार हो गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों का ये साधन है ओंकार। इसलिए ओंकार की बड़ी विशेषता है। तो कल हम लोग ये शांति पाठ देख रहे थे, शांति पाठ। तो शांति पाठ ये अथर्ववेदीय का है, ओम भद्रम करने भी। तो ओमकार किसी भी मंत्र को उच्चारण करने से पहले किया जाता है। मंत्रेषु प्रथम प्राय ओमकार पठते बुधे ही। विद्वान लोग बोलते हैं किसी मंत्र को उच्चारण करना हो तो किसका उच्चारण करना चाहिए, ओमकार का, ओमकार का। क्यों, ओमकार जो है ना परमात्मा का वाचक है। किसका वाचक है, परमात्मा का वाचक है। तस्य प्रणव, तस्य वाचकस्य प्रणव कहा ना, ये जो प्रणव जो ओमकार है परमात्मा का वाचक है। अ उ और म तीन है कि नहीं, एकाक्षरी कोश जब देखेंगे आप, एकाक्षरी कोश होता है उसमें आता है कि ओकार जो है किसका वाचक है, विष्णु का वाचक है। समझ में ना, ओकारण विष्णु उच्चते, ओकारण विष्णु उच्चते, उकारस्तु महेश्वरः। उकार किसका वाचक हो गया, महेश्वर। उकारस्तु महेश्वरः, अब मकारण उच्चते ब्रह्मा, जो अंतिम मकार है कि नहीं, ये किसका है, ब्रह्मा। हाँ? इसलिए प्रणवस्य त्रयो मताः, प्रणव जो ओंकार है ओंकार को प्रणव कहते हैं। एकाक्षरी में जो तीन कह दिया कि तीनों अक्षर तीनों के वाचक हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीनों का स्वरूप तो एक ही है। तीनों का स्वरूप कैसा है? शुद्ध है। इसलिए ओंकार को पहले कह दिया तो हे देवा, ये देवता लोग जो है ना बड़े विघ्न डालते हैं कि नहीं, इसलिए देवता को प्रसन्न करना है कि आप लोग विघ्न ना डालें, आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जिससे कि हम वेदांत मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हे देवा कर्णे भी शुणुयाम भद्रम, तो आपकी कृपा से भद्र को सुने, मंगल करने वाला शब्द को सुने। तो मंगल करने वाला कौन है? परमात्मा है। मंगलम भगवान विष्णु हो, मंगल करने वाले कौन है? भगवान है। ये भगवान मंगल रूप भी है और भगवान का नाम भी मंगल रूप है, है कि नहीं? नामी जो परमात्मा है वो तो मंगल करता है और उसका नाम भी मंगल करता है, दोनों है। और भगवान की लीला भी जो है लीला, भगवान की लीला भी मंगल करने वाली है, भगवान का नाम भी मंगल करने वाला है और स्वयं भगवान जो नामी वो भी मंगल करने वाला है। इसलिए जो शब्द परमात्मा का वाचक हो, परमात्मा का प्रतिपादन करने वाला हो, है ना, वो हमारे मंगल करने वाला है। इसलिए साधक जो है उसके लिए मंगल करने वाला तो क्या है? वेदांत वाक्य है। वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्य से ही हमारा क्या होगा? वास्तविक मंगल होगा। इसलिए बोलते हैं कि भद्रम करने भी शुणुया मह, आप जो है विघ्न न डालें, वेदांत मार्ग में आप जो है उपकार करें हमारा। बहुत विघ्न आ जाते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे महापुराण महाभारत में, एक बार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन से कहे, भाई कोई गंगा स्नान करने जाता है ना, रास्ते में हजार योद्धा विघ्न डालते हैं, प्रतिबंधक होते हैं। भीमसेन बोला, हमसे भी विघ्न डालेगा कोई? हम इतने बड़े बलवान है, हमसे कौन विघ्न डालेगा? हम देखते हैं कल स्नान करने जाते हैं गंगा जी, कौन डालता है देखेंगे। तो सुबह गए गंगा जी गदा लेकर के, और आगे पीछे देख रहे हैं कौन आ रहा है, देखें कोई नहीं आ रहा है। तो गंगा किनारे तक गए, फिर वापस आ गए घर तक, घर से फिर गए आगे पीछे देख करके, तब भी कोई नहीं है। कई बार चक्कर लगाए, गए आए, फिर भगवान के पास आकर के बोले, देखो मेरे डर से कोई भी योद्धा कोई भी विघ्न डालने वाला नहीं आया। तो भगवान पूछे, तुमने गंगा जी का स्नान किया? स्नान तो नहीं किया, यही तो विघ्न है, और क्या विघ्न है? विघ्न जो है ना कई प्रकार से आते हैं, समझे कि नहीं? अरे भाई आपका जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान भी प्रतिबंध डालता है, ध्यान में रखना। अरे ज्ञान हुआ मान लीजिए शास्त्र का, और आपको यदि अभिमान हो गया तो, अभिमान यदि हो गया ज्ञान का, तो एक ज्ञान आपको जो है प्रतिबंधक को दूर करेगा, स्वयं प्रतिबंधक हो गया। अज्ञान को ज्ञान दूर नहीं कर सकता यदि ज्ञान में यदि आपको अभिमान हो गया। किसी को वैराग्य हो गया मान लीजिए, और वैराग्य का यदि अभिमान हो गया, तो वैराग्य ज्ञान के लिए तो अत्यंत उपयोगी है, जिसको साधन चतुष्टय बोलते हैं, लेकिन वैराग्य का यदि आपको अभिमान हो गया तो ये स्वयं प्रतिबंधक हो गया कि नहीं? अरे भाई हम इतने बड़े विरक्त है, तो विरक्त कहां हुए फिर? विरक्ति का जो अभिमान है उसको तो छोड़े नहीं तुम, समझ में कि नहीं? इसी प्रकार से प्रतिबंधक कई प्रकार से होते हैं, कभी दृश्य रूप से होगा और कभी अदृश्य रूप से होगा। इसलिए यहाँ पर विघ्न को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि हे देव, आपकी कृपा से हम मंगल करने वाला जो वेदांत वाक्य है, हमारा उद्धार होने वाला जिस वाक्य से, उसी वाक्य को हम सुने। अच्छा, तो किसी संत महापुरुष का दर्शन करना है तब भी मंगल होता है, किसी का विग्रह देखना है, परमात्मा के जो सविग्रह है, सगुण साकार है, उसका दर्शन करने से जैसे मंगल होता है, उसी प्रकार संत महापुरुष का गुरु का दर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, उससे भी क्या होता है, पुण्य होता है। जैसे गंगा जी का, गंगा जी में स्नान करने से ही पुण्य होता है, आचमन करने से भी पुण्य होता है, और गंगा जी का नाम लेने से भी पुण्य होता है ना। इसलिए यहाँ पर संत महापुरुष का दर्शन हो जावे, ध्यान हो जावे देख करके, इसलिए हमारी चक्षुर इंद्रियां भी स्वस्थ रहे, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। इसके पास पुस्तक देख सकते हैं, भद्रम पश्चिम अक्षवीर यजत्राहा, यजत्रा हम ध्यान करने वाले हैं, किसका ध्यान करने वाले हैं, परमात्मा के सविग्रह का, गुरु के विग्रह का, हाँ? उसका ध्यान करने के लिए भी हमारी इंद्रियां क्या हो, स्वस्थ हो, चक्षुर इंद्रियां स्वस्थ हो। अच्छा, लेकिन किसी की स्तुति करेंगे, किसी की प्रार्थना करेंगे और ध्यान करेंगे तो अंग कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर अंग से ही आप कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, उपासना भी करेंगे, वेदांत का श्रवण भी करेंगे, अंग स्थिर होने पर। अंग स्थिर होने से एक पुण्य होता है, चाहे कर्म करो चाहे उपासना करो, स्थिर अंग के बिना आपका नहीं हो सकता है, सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर, स्थिर ही अंग ही तुष्टवान सह तनु भी, हमारा जो तनु है, शरीर है, अंग है, ये स्थिर हो जावे आपकी कृपा से, जिससे कि हम जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। तो जब ध्यान तप करते करते एक पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य जिसके शरीर में पुण्य संचित हो गया हो, उस शरीर का किसी से स्पर्श भी हो जावे, वो अन्न पुण्य जो है शुद्ध हो जाता है। इसे कोई संत महापुरुष है, मान लीजिए संत महापुरुष किसी मिष्टान्न को छू दिया, देखो वो मिष्टान्न क्या हो जाता है, मिष्टान्न नहीं होता वो, फिर वो प्रसाद हो जाता है। क्यों? उस संत ने वेदांत आदि का श्रवण करते हुए, शरीर से जब धन आदि करते हुए, शरीर को क्या कर दिया है, वो बिल्कुल शुद्ध कर दिया है। शुद्ध शरीर से छुआ और स्पर्श किया हुआ वस्तु क्या हो जाती है, वो भी शुद्ध हो जाती है। इसीलिए अंग को स्थिर करके ही आप जो है अपने अंग को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं स्थिर ही अंग ही, हमारा अंग क्या है, स्थिर हो जावे। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, देखो बहुत गलती हो जाती है शरीर से, कोई के बोलते हैं और हाथ भी हिलता रहता है ना। कोई के बोलते हैं भाई तुम्हारा हाथ भी बोलता है क्या, मुंह तो बोल रहा है ठीक है, तुम्हारा हाथ क्यों हिल रहा है। ऐसे हम बच्चे बचपन में पढ़ने जाते थे तो ये गुरु जी बताते, पहले स्थिर होकर बैठना सीखो, बाद में जो है हम वेदांत का श्रवण कराएंगे, ये बोलते हैं। अंग स्थिर होना चाहिए। और मान लीजिए स्वस्थ शरीर भी मिल गया परमात्मा की कृपा से, अंग स्थिर भी हो गया, लेकिन झटिती यदि राम नाम सत्य हो जावे तो गुरु की आप सेवा कैसे करेंगे। गुरु की सेवा के बिना, दीर्घ आयु के बिना ये वेदांत का श्रवण कैसे होगा, वेदांत का अध्ययन कैसे होगा। ये वेदांत श्रवण जो किया जाता है, इसका अंग क्या है, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु शुश्रूषया लब्धा, कृच्छ्रासेति फलम लवेद कहा गया। वेदांत का श्रवण से ज्ञान तो होता है, इसी में किसी प्रकार का संशय नहीं है। वेदांत श्रवण करेंगे, ज्ञान न होने पर भी एक पुण्य प्राप्त होता है। लोग बोलते हैं भी हमारे कुछ पल्ले पड़ता नहीं वेदांत, ये क्या है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अरे भी भले ही समझ में ना आवे, आप सुनते रहेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कौन सा पुण्य होगा? यदि निष्काम व्यक्ति वेदांत का श्रवण करेंगे तो कौन सा पुण्य होगा? अशुक्ल अकृष्ण। योग दर्शन वाले क्या बोलते हैं इसको? अशुक्ल अकृष्ण। एक होता है शुक्ल, पुण्य, पुण्य कर्म हुआ। दूसरा क्या है? वेद निषिद्ध कर्म करेंगे तो कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। और कोई की कर्म होता है उससे थोड़ा बहुत पाप भी हो जाता है पुण्य के साथ साथ, उसको बोलते हैं शुक्ल कृष्ण। क्या बोलते हैं? शुक्ल कृष्ण। लेकिन आप समाधि अवस्था में जाएंगे, निष्काम भाव से वेदांत का श्रवण भी करेंगे, है ना, उससे जो पैदा होगा ना उसको क्या बोलेंगे? हाँ, अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल भी नहीं है और कृष्ण भी नहीं है, जिसको जिसको जिससे चित्त शुद्ध होता है। इसलिए कहा गया कि गुरु शुश्रूल सया लब्धा किच्छा सिति फलम लवे। दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति सनेता, प्रतिदिन श्रद्धा भाव से वेदांत का श्रवण यदि करता है, भक्ति संहिता, भक्ति का अर्थ क्या है? श्रद्धा। आस्तिक बुद्धि का नाम क्या है? भक्ति। यहाँ पर श्रद्धा, शास्त्र में जो कहा गया है, संत महापुरुष जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही है। इस भाव से यदि कोई प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करता है, श्रवण कैसे करेगा? गुरु शुश्रूषया लब्धा, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा केवल हाथ पैर को दबाना ही गुरु की सेवा नहीं है। गुरु की सेवा कई प्रकार से हो सकती है। गुरु से दूर में रह करके भी गुरु की सेवा कोई कर सकता है। तो गुरु शुश्रूषया लब्धा कृच्छ्रा सीति फलम लवे। कृच्छ्र व्रत जानते ना? कृच्छ्र व्रत 80 कृच्छ्र व्रत करने पर जो फल प्राप्त होगा ना, आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा वेदांत का श्रवण करने मात्र से। भाई कैसे हो जाएगा? भाई शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है ना, शास्त्र के विषय में संशय नहीं करना चाहिए, है ना। देखो गंगा जी में रोज स्नान करते हैं, पुण्य होता है। और कुंभ मेले में जो स्नान करते हैं, पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं, तो अधिक पुण्य मिलता है कि नहीं? आप बोलेंगे भी हाँ, ये भी तो ऐसा समय है, वो भी ऐसा समय है। आज भी जैसा स्नान किया उसी दिन में ऐसे ही स्नान करेंगे, तो उसके दिन में जो है पुण्य ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भाई शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है ना, शास्त्र जो बोल दिया उसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए वेदांत का श्रवण क्या है? पुण्य भी होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि वेदांत का श्रवण यदि करेंगे तो श्रवण का अंग क्या है? गुरु की सेवा। आपके पास दीर्घ आयु नहीं है, वेदांत का श्रवण नहीं कर सकते, गुरु की सेवा नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, निधिध्यासन नहीं कर सकते। इसलिए आपकी कृपा से हम देवताओं को जो हित है, गुरु की सेवा के लिए जो हित है, दीर्घ आयु है। कुर्वन नैवेह कर्माणि जिज विषय शतकुम समाह। देखो 100 साल तक कहा, 100 साल तक जीने की इच्छा करें। किस लिए? भोग के लिए। कुर्वन नैवेह कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए हम 100 साल तक जिए, जिसके द्वारा हम वेदांत का अधिकारी बन जावे। इसलिए और स्वस्ति न इंद्र वृद्ध स्वाह, इंद्र सभी को बल देने वाला है। जिसके पास बल नहीं है गुरु की सेवा नहीं कर सकता है वो। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य हो। देखो बल के बिना आप गुरु की सेवा कैसे करोगे जी? 1 घंटा बैठ नहीं सकते आप वेदांत श्रवण में, तो आगे जाकर ज्ञान कैसे होगा। इसलिए इंद्र जो बलवान है वो हमको बल प्राप्त करे, वेदांत की उपयोगी जो बल है, किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं। और भगवान सूर्य है, हमारे शरीर में प्राण का संचार करने वाले हैं, शरीर को पुष्ट करने वाले हैं, वो भी हमारे ऊपर कृपा करें। इसलिए बोलते हैं स्वस्ति न पूखा विश्व वेदाह। पूषा, पूषा, पूषा किसको बोलते हैं? भगवान सूर्य को पूषा बोलते हैं। वो सभी को जानता है, शरीर सभी के शरीर में प्रविष्ट है, सभी विश्व को जानने वाला है, वो हमारे ऊपर कृपा करें। और हम लोग उसी का अपमान करते हैं भी। अपमान कैसे हो रहा है? देखो हम लोग बहुत गलती करते हैं ना, लेकिन ध्यान नहीं देते हम लोग, ध्यान नहीं देते। देखो आपके घर में कोई संत महापुरुष आने वाले हैं। संत महापुरुष क्यों, कोई भी आवे, जो भी अतिथि आएगा, अतिथि क्या होता है हमारे शास्त्र में, अतिथि देवो भव। आपको पता है कि अतिथि अमुक समय पर आने वाले हैं, आपको पता है। आज जिस समय अतिथि आएंगे आपके घर में, आप उस समय सोते रहेंगे तो अपमान होगा कि नहीं बोलो? जब अतिथि का अपमान होगा तो आपको दोष लगेगा, आपकी बुद्धि में दोष आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अतिथि का अपमान होने पर। और अतिथि का अपमान करते हुए यदि वेदांत का श्रवण करेंगे तो श्रवण से कैसे ज्ञान होगा बताओ? इसी प्रकार जो शास्त्र का श्रवण करते हैं, सत्संग में आते हैं, सभी को पता है कि सूर्य कैसे हैं, साक्षात भगवान है। सूर्य कैसे हैं? साक्षात भगवान है, वो हिरण्य गर्भ रूप है। और हिरण्य गर्भ में हमारे जितने देवी देवत्या हैं वो सब उसके अंगभूत है। भगवान सूर्य के सब अंगभूत है, और सभी के घर में अतिथि के रूप से आते हैं। सूर्यदेव के समय आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना, हाँ? वो अतिथि हो गए। और आपको पता है कि सूर्य भगवान का उदय अमुक समय पर होता है, और आप लोग उसी समय सोते रहेंगे तो अपमान हुआ कि नहीं बोलो? हैं? हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, हम लोग उठेंगे, आप लोग तो आते हैं टाइम पर, उठ जाते होंगे तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठेगा तो भगवान सूर्य का अपमान हुआ कि नहीं बोलो? हैं? तो भगवान सूर्य का अपमान हुआ तो हमारी बुद्धि में दोष आएगा कि नहीं आएगा? हैं? आजकल जब से जो ये टीवी आ गया ना, टीवी दूरदर्शन, ये मोबाइल वगैरह आ गया, ये तो तब से तो मामला और बिगड़ गया। साधक आगे बढ़ना बढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। जैसे लंका में विभीषण है ऐसा रहना पड़ता है आजकल। लंका में विभीषण है ना, जैसे दांत के अंदर जीभ, जीवा है ना, ऐसा रहना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम भगवान सूर्य का अपमान करते हैं।